तो इसलिए आज हमारे बीच तपस्या द्वारा जीवन में परिपक्वता कैसे आए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारी आदरणीय गीता दीदी जी पधारे हैं। आप बाल्य अवस्था से ही अभ्यास में लगे हुई हैं, बाबा की हैं, बाल्य अवस्था से ही बन गए, छोटी सी आयु में बाबा के पास आ गए और तब से ही समर्पित रूप में अपने गुजरात में भी सेवाएं की, हेडक्वार्टर में भी सेवाएं लंबे अरसे से आप कर रही हैं। आज भी जगह जगह सब जगह भट्टी कराने विशेष आपको निमंत्रण मिलते रहते हैं। आज भी हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच है, कल आप आगे चली जाएंगी, तो आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गीता बहन जी हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेशन के रूप में बिजनेस विंग को देखती हैं, उसकी भी सेवाएं करती हैं, साथ साथ हम सबकी भी ज्ञान योग से पालना, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बाबा के बच्चों को और आगे बढ़ाना, उनके पुरुषार्थ को और सहज बनाना और विधि देना, ये सबसे बड़ी मेहनत कहूं या बड़ी ये अभ्यास मोटिवेशन देने का कार्य जिम्मेवारी संभालना बहुत बड़ी चीज है। तो आपका एक बार आज फिर हम सबके बीच स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। भक्ति में भी तपस्या का ही मौसम चल रहा है, है ना? एक तरफ श्रावण मास की भी भक्ति इतनी हुई, अभी भी कुछ न कुछ चल ही रहा है, गणेश चतुर्थी दूसरी ओर पर्युषण जैनों के बीच में, मुस्लिमों के भी पूरे हुए रोजा है ना? लगभग ये अगस्त सितंबर मास दो तपस्या के ही भक्ति में भी प्रोग्राम चलते हैं। भर नित्य भक्ति करते हैं, भगवान को तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन विशेष तपस्या उसका भी यादगार बना हुआ है। संगम युग में हम बच्चों ने जो जो किया सबका यादगार बना है। हम ब्राह्मण बच्चों ने भी खास बैठ के तपस्या की, जैसे आप सभी आए हैं, तो उसी का यादगार, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद अभ्यास ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में अभ्यास था पर सही ज्ञान नहीं था, इसलिए भक्ति में भी बहुत व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ होम हवन क्या क्या नहीं किया। पर जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान कोई नहीं दे सकता, वो सही ज्ञान नहीं था भक्ति में। पर इतना जरूर हरेक आध्यात्मिक व्यक्ति ये मानते रहे, समझते रहे कि तपस्या जरूरी है, त्याग तपस्या जरूरी है। इस इसलिए व्रत उपवास त्याग के हिसाब से करते हैं, कुछ जाप करते हैं तपस्या के हिसाब से करते हैं। केवल सही ज्ञान और बाबा से कनेक्शन नहीं हुआ, अब हमें सही ज्ञान भी है, बाबा का सत्य परिचय भी है, हमारा योग बाबा से लगा हुआ है। अब संगम युग में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? पुरुषार्थ, अब वही जरूरी है। भक्ति में तो मेहनत थी पर ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान है। सही क्या है वो बाबा बता रहे। अब चाहिए कि वो अभ्यास हो, बार बार सबसे फारिग होकर सभी बातों से न्यारा होकर बाबा की याद में बैठना, ये प्रैक्टिस ही जरूरी है। पर अभ्यास की रुचि भी किसको होगी? बार बार अभ्यास करने का मन भी किसे होगा? जिनको और सभी बातों से वैराग्य होगा। इसलिए गीता में लिखा है कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। जितना ज्ञान समझते हैं, जो कुछ अज्ञान है, अपवित्रता है, असार है, अयथार्थ है, उन सब से मन हट जाता है। उसको वैराग्य कहते हैं। वहां से राग, आसक्ति, आकर्षण, इंटरेस्ट, जो कुछ कहो वो खत्म हो जाता है। जब ज्ञान गहराई से समझते हैं तो समझने का अर्थ ही है वहां से मन हट जाना, है ना? वरना समझा क्या? तो इधर से जाएंगे, रास्ते में खड्डा आएगा, ध्यान रखना गिरे नहीं। पर ये जानते हुए भी उसमें गिरना, माना हमने समझा क्या, है ना? तो ज्ञान रोज समझते हैं, रोज बाबा समझाते हैं। तो समझते समझते जो अज्ञान है, असार है, अपवित्र है, अयथार्थ है, अब तो वो स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें, उसे वैराग्य कहते हैं, उसको वैराग्य कहे। वहां से मन हट जाए, रुचि न रहे, आकर्षण न रहे, वो है वैराग्य। जो करना चाहिए श्रीमत के अनुसार, जिसमें कल्याण है, प्राप्ति है, जो करना चाहिए वो करने में लग जाना दृढ़ता पूर्वक, उसे तपस्या कहते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। बाबा ने पहले परिवर्तन में ज्ञान देकर स्मृति चेंज की। देह समझते थे, आत्मा समझने लगे। दुनिया को याद करते थे, परमधाम को याद करते। बाबा ने ट्रांसफर किया, इसलिए बाबा ने कहा कि याद कहो, योग नहीं। योग माना कुछ अलग करना, विशेष करना, ऐसा समझते भक्ति के हिसाब से। बाबा ने कहा ना, मुश्किल समझते, याद करना है। और याद करना मनुष्य का स्वभाव, हम कुछ ना कुछ याद करते ही रहते, हमें किसी न किसी की याद आती ही रहती है, वो हमारा नेचर है, हमारी एक्टिविटी है। बाबा ने हमें बताया क्या याद करना, रोज की मुरली में बाबा चिंतन का सब्जेक्ट दे देते हैं। आज भी बाबा ने कहा, समझाओ, ज्ञानदान करो, दो बाप का परिचय दो, अल्टीमेट सेवा के द्वारा भी हम याद में ही तो पहुंचना चाहते हैं। सेवा भी किस लिए करते हैं? सेवा के द्वारा भी आखिर कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा ना, क्योंकि सेवा किसकी है? बाबा की है। जिस मालिक का काम करेंगे वो मालिक याद आएगा ना? तो सेवा के द्वारा भी बाबा के पास ही हम पहुंचते। तो पहला है याद, स्मृति, पहला ट्रांसफॉर्मेशन बाबा ने ये करा कि बुद्धि में ज्ञान घृत बाबा डालते गए और स्मृति की ज्योत जगती गई। अब अनुभव करते हैं कि बाबा ही याद रहता, ज्ञान ही चिंतन में आता रहता। याद के साथ बाबा के प्रति जब हमारा प्यार होता जाता है, बीज तो बाबा है ना जो ज्ञान देता है, तो नेचुरली आत्मा बाबा पर फिदा होती है। कि बाबा आपने अज्ञान अंधकार मिटाए, भटकने से छुड़ाए, तो नेचुरली बाबा पर ही प्यार आता है। तो स्मृति के साथ जब दिल का प्यार बाबा से होने लगता है तो हम महसूस करते हैं फिर कि अब हमारा योग बाबा से लग गया, अब हम अभ्यास करने वाले नहीं लेकिन हमारा योग बाबा से लग चुका है। अब और कोई आकर्षण नहीं, अब और किसी की याद खींचते नहीं लेकिन एक नेचुरल हमारा इंटरनल कनेक्शन, एक सूक्ष्म लिंक बाबा से हमारी जुड़ी हुई ही है। भले शरीर से हम ज्यादा ना भी बैठते हों लेकिन अब योग लग चुका है, अब बुद्धि भटकती नहीं है, किसी को खोजती नहीं, वरना मन खोजता रहता है, कोई हूं मेरा, वो मेरा मिल गया है, उनसे योग लग गया है। बाबा कहते हैं ना ठिकाना मिल गया, वो है नेचुरल बाबा से योग। एकाग्रता सिर्फ मानसिक नहीं, एकाग्रता सिर्फ अभ्यास के समय नहीं लेकिन जीवन का एक दृढ़ निर्णय, एक दिशा चुन लेना, जीवन का एक फैसला हो जाना कि मैं बाबा की ही हूं। माना योग बाबा से लग गया, उसमें भी हम बच्चे काफी पास है, क्या अब कोई भ्रमित नहीं कर सकता, भटका नहीं सकता, आप कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता, इतना क्लैरिटी है, योग लग गया बाबा। अब बाबा चाहते हैं समय अनुसार कि अब तपस्या, अब योग इतना शक्तिशाली बन जाए जो एक तपस्या का रूप ले। लगन लग चुकी है, प्यार भगवान से हो चुका है, योग बाबा से लग गया है, पर लगन में मगन हो जाए, लव में लीन हो जाए, याद में एकाग्र हो जाए, खो जाए, वो तपस्या, उसको तपस्या कहते हैं। एक इंटेंशन के साथ लक्ष्य पूर्वक, समझ पूर्वक, दृढ़ता से किया हुआ अभ्यास वो तपस्या। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम बाप समान बन जाएं, निरंतर योगी हो जाएं। आज था या कल था कि बाबा भूले नहीं, मतलब निरंतर, कल था। हम खुद भी उस याद की अनुभूति में रहे और दूसरे भी महसूस करें कि ये सिर्फ ज्ञानी तो आत्माएं नहीं, ये सिर्फ अथक सेवाधारी नहीं, ये नियम मर्यादाएं वाले हैं सिर्फ इतना नहीं। अब क्या टाइटल मिलना चाहिए कि ये तपस्वी हैं? ये टाइटल अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, हम अपने आप लगा लेते कि हम राजयोगिनी गीता बेरे, पर हम टाइटल लगा लेते हैं, पर एक स्वीकार हो जाए खुद को और लोग भी महसूस करें कि ये तपस्वी है। एक तपस्वी का चित्र बनाना हो तो आप उसमें क्या क्या दिखाएं? एकदम स्थूल भक्ति के हिसाब से भी कोई योगी तपस्वी का चित्र बनाना हो तो हम उसमें क्या बताएंगे? कि वही दूर जंगल में, गुफा में आसन लगाया हुआ, आंख बंद, चेहरे पर शांति, ये सब बताते हैं। यही चीजें हम अपने में आध्यात्मिक रूप से लाते हैं। हम तो यथार्थ योगी, यथार्थ तपस्वी है, वो तो हठ दमन वाले हैं। हम तो सही योगी तपस्वी, बाबा कहते हैं ये जंगल वैराग्य का प्रतीक है, गुफांतर मुक्ता का प्रतीक है, जिनको वैराग्य होगा दुनिया से वो अंतर्मुखी होगा, उनको जानने के, सुनने के, देखने के, बोलने के, खाने के, पहनने के, घूमने के रस खत्म हो जाएंगे। उसको अपने आप में ही रस है, अंतर्मुखी तो वही बनेगा ना, जिनको अपने स्वरूप में ही आनंद है। मुझे अपने ही सत्य चैतन्य शुद्ध स्वरूप में आनंद है। दादियां कहती हैं कि हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा, माने अपने ही शुद्ध सत्य चैतन्य स्वरूप में ही आनंद, अंतर्मुखी। वे देख कर आनंद, कुछ सुना जान कर आनंद कि मुझे ये बात पता चली, हा? मैंने खुद देखी। बोलने का आनंद, सुनने का आनंद, खाने का आनंद, वो इंद्रिय आनंद बाबा कहते हैं ना, फिजिकल इंद्रिय सुख आनंद है। इसलिए जब तक देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तब तक खुश है। अपने आप में आनंद, मुझे कुछ भी न करके भी अपने में आनंद। इसलिए कहते हैं ना भाई, पहले की तुलना में आजकल के बच्चे, चाहे युवा चाहे आज के लोग, ऐसे ही नहीं बैठ पाते। पहले लोगों के जीवन में एक्टिविटी कम थी, आज ऐसे शांति से बैठ ही नहीं पाते। कुछ भी काम नहीं होगा तो भी मोबाइल बटन दबाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, कुछ भी काम नहीं है। अभी अभी तो देखा कि कोई नहीं है SMS तो भी खोलेंगे। किसी का आया तो नहीं फोन, मन शांत नहीं है, इंतजार में है, स्व में स्थित नहीं है। तपस्वी स्व में आनंद, मुझे अपने ही शुद्ध सत्य अविनाशी पवित्र स्वरूप में आनंद। आत्मा आनंद स्वरूप है ना, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें कि सच में मैं आनंद स्वरूप हूं, कुछ भी ना करके भी आनंद में हूं। वो अंतर्मुखी बनेगा। उनको आसनस्थ बताते हैं, आसन पर बैठा हुआ, माना स्थिति को पकड़ा हुआ है। आसन कौन सा है? अपनी ऊंची स्थिति में स्थित, स्वमान में स्थित, हम बहुत जल्दी साधारण बन जाते हैं। बहुत कम समय हम अपनी ऊंचाई में स्थित रह पाते। जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है, तपस्या शक्तिशाली होती जाती, उसमें टाइम भी चाहिए, मतलब क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए, एक लंबे समय का अभ्यास एंड क्वालिटी ऑफ योग भी चाहिए। क्वालिटी ऑफ योग, जब भी अभ्यास करे जिगरी करे, दिल से करे, पूरा समेत जाए हम, और क्वांटिटी ऑफ योग, बाबा कहते ना लंबे समय का अभ्यास चाहिए। मुझे लगन बहुत है बाबा से, पर बस दो मिनट बैठी बाबा के कमरे में और चल पड़े, इससे क्या होगा? भाई एक शुरुआत के लिए बहने कहती है कि भाई दो मिनट आओ बस, बाबा के घर में दो मिनट आप आओ, बाबा के कमरे में बैठ के जाओ, पर आज बरसों के बाद भी दो ही मिनट बैठते, तो लगन बढ़ी ही नहीं, अभी तक भगवान के लिए समय ही नहीं। हमें मन को एजुकेट करना होगा, अभ्यास देना होगा ना, मन मोड़ना है ना। इसलिए क्वांटिटी भी चाहिए। बाबा जो कहते 8 घंटा कम से कम इमर्ज रूप की याद, 8 घंटा कोई बैठने की बात नहीं है, पर इमर्ज रूप में याद, माने एकदम रियल मुझे याद महसूस हो कि मुझे याद है, पर उस पर पहुंचने के लिए मैं 2 घंटा भी रोज विशेष अभ्यास करूंगी, और वो भी क्वालिटी अभ्यास करूंगी, तो उसके आगे पीछे का बाकी के 2 घंटे भी एक नेचुरल याद की स्टेज रहेगी, है ना। जब हम बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं तो उसके आसपास के 2 घंटे तक हमें आवाज में आना, बातें करना, बहिर्मुख होना अच्छा नहीं लगता है, तो वो 4 घंटे का कॉन्शियस इमर्ज रूप में याद हमारी होती है। ऐसे बाबा कहते 8 घंटा, तो कुछ तो अभ्यास तो चाहिए था कि फिर वो स्टेज में स्थित होना। वो बताते हैं ना भाई, योगी बैठेगा माने आसन बिछा कर बैठेगा, माना वो जहां भी बैठेगा, कुछ भी करे या ना करे, लेकिन वो स्थिति में रहेगा। आंखें बंद मगन अवस्था का प्रतीक है कि वो स्मृति में मग्न, बाबा की याद में खो जाना। तो हम अपने आप में ये चेक करें कि अब जबकि बाबा भी हमारी तपस्या ज्वालामुखी शक्तिशाली चाहते हैं, और लास्ट अब वो ही एक सब्जेक्ट रहना है, बाकी तो सब पूरे हो जाने। ज्ञान जो भगवान को देना था वो उसने हमें दे दिया है। अब तो रिवीजन, रिवीजन का रिवीजन, उसका रिवीजन चल रहा है, अंडरलाइन करा रहा है ना। ज्ञान जो बाबा को देना है वो तो उसने दे दिया ना। सेवा का सब्जेक्ट भी बाबा कहते हैं, समय और परिस्थितियां ऐसी होंगी कि अब जिस प्रकार की सेवा हम करते रहे हैं वो अब इतना नहीं चल सके। इवन इस वर्ष बाबा ने सीजन में एक मुरली में कहा कि आगे चलकर मनसा सेवा भी सफल नहीं होंगी, क्योंकि वो आत्माएं इतनी हलचल में होगी, वो मनसा भी आपकी जो पावर है वो ले नहीं सकेगी। क्योंकि जब वो हलचल में होंगे तो वो रिसीव नहीं कर सके। मनसा सेवा द्वारा भी उनका कल्याण, वो भी ये थोड़ा ही टाइम है। अति और अंत के बीच का जो थोड़ा सा पीरियड है अब वो ही पीरियड है। दादी ने जो कहा ना 25 अगस्त पर कि अति पर जा रहा है और वो अंत होगा, बस तो ये अति और अंत के बीच का जो थोड़ा सा समय है उसी में ही मनसा सेवा यूज होनी है। इसलिए सेवा भी अभी ही करने का मतलब है, चाहे मनसा सेवा करे तो भी। अंत में केवल स्थिति में स्थित रहना बस, और साक्षी होकर ड्रामा को देखना या खुद चलने की तैयारी करना, चल पड़ना मतलब। इसलिए अंदर से एक लगन, क्या तपस्या में हमारी परिपक्वता आ जाए, मास्टरी आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, एक परम शांत मन की स्थिति का अनुभव हमें। कल एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी कि अक्सर हम क्या कहते हैं कि बात ही ऐसी थी ना कि मैं हिल गई, मुंझ गई, परिस्थिति इतनी बड़ी आई कि बस मैं तो बेचैन हो गई। पर शांत और बेचैन मन परिस्थिति का हल कैसे खोजेगा? जितनी बड़ी समस्या उतनी गहरी शांत मन की स्थिति और स्थिर मन की स्थिति ही तो हल निकाल सकेगी। माना परिस्थिति के समय ही तो शांत और स्थिर अवस्था चाहिए। जैसे कोई बहुत गहरी बात है तो हम कहते हैं ना भाई ऐसे मैं नहीं जवाब दे सकती, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पर, हमें आपस में बैठक पर इस पर बात कुछ करनी पड़ेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है कि मैं अभी का भी जवाब दे दूं, ऐसे हम कहते हैं ना। माना जितनी बातें परिस्थितियां भारी, माना जितनी हलचल ज्यादा उतनी ही मेरी स्थिति और शांत स्थिर गहरी। इसलिए मुझे रोज आने वाली छोटी छोटी बातों के प्रभाव से खुद को मुझे डिटैच रखना। मालूम है अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, ये सब चीजें होनी है, तो जितना हम बाबा की याद में रोज प्रैक्टिस जो करते हैं ना, कि देह भान से न्यारा, मुझ आत्मा के आसपास जो है शरीर सहित उनसे न्यारा होना, यहां से ऊपर जाना, वतनवासी बनना और एक बाबा की तरफ फोकस हो जाना, ये अभ्यास जितना हम जिगरी करेंगे, आप अपने को डिटैच रख सकेंगे। परिस्थिति आने पर भी हम न्यारा रह सकेंगे। इसलिए गहन शांति अतीन्द्रिय आनंद तपस्या का तेज, ये तीन चीजें हमें अपने व्यक्तित्व में महसूस होनी चाहिए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे, जब चीज मेरी अनुभूति में आएगी वो तुरंत दूसरे को भी मेरे द्वारा अनुभव होगी। हम रोज डायरेक्ट बाबा से योग लगाते, पवित्र जीवन है हमारा, सत्य ज्ञान रोज हम सुनते हैं, ये अभ्यास हमारे अंदर यतीन्द्रिय आनंद, गहरी शांति, पवित्रता और तपस्या का तेज हमारे व्यक्तित्व में लाएगा। हम खुद अनुभव करेंगे। और कई आपको मिलेंगे, जानते भी नहीं हैं, पर आपका स्वरूप ही उनको अनुभव कराएगा ये कोई तपस्वी योगी है। हमने सेवा का आनंद अनुभव किया है, सेवा में दौड़ दौड़ के हम आते हैं, खुशी होती है, हमें पढ़ाई का भी आनंद है, हमें ईश्वरीय परिवार से मिलने का भी आनंद अनुभव किया हुआ है, पर तपस्या का आनंद मुझे अपने आप में आनंद, बाबा में आनंद, डिटैच होने में आनंद, बाबा में मगन होने में आनंद, ये आनंद महसूस हो, तो सब जो योग में प्रॉब्लम आते हैं कि भटकता है मन, नींद आती है, माथा दुखता है, ये सब खत्म, क्योंकि जब अंदर से प्राप्ति का अनुभव है, आनंद है, तो ये कुछ होगा ही नहीं ना। और योग का प्रभाव कर्म तक आना चाहिए, योग का प्रभाव कर्म तक आना चाहिए, प्रैक्टिकल जो कर्म करते, माना कर्म यथार्थ होने लगे, तब कहेंगे सही योग है। तो वो चेक करें कि कर्म का प्रभाव, योग का प्रभाव कर्म तक है, समझे, जो मन प्यार के सागर बाबा को याद करेगा, वो मन घृणा नहीं कर सकता है, फिर नफरत नहीं कर सकता है। अगर मुझे घृणा नफरत किसी से आती है, मीन्स मन प्यार स्वरूप नहीं बना, प्यार के सागर को याद करते हुए भी मैं प्यार स्वरूप नहीं बने, बाबा कहते ना स्वरूप और स्थिति बननी चाहिए, वो है कर्म में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन। बाबा कहते हैं ना उसका योग, सहयोग, सेवा, पढ़ाई, किसी भी कारण से उसमें अंतर नहीं आएगा। कई बार ये सब चीजें व्यक्ति के आधार पर चलती, मैं विस्तार नहीं करती हूं, पर आप इसको समझ सके होंगे। मेरा योग, सहयोग, सेवा, पढ़ाई, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, फलाने हैं तो ज्यादा और ये नहीं है तो कम, ये बदलना नहीं चाहिए। अगर ये निश्चय और लगन बाबा से है कि भगवान से हम पढ़ते हैं, भगवान का ये कार्य है ना, निमित्त हम आत्माएं तो बदलते रहते हैं, आज है कल नहीं, पर हमारा बाबा के प्रति इतना समर्पण लगन इसमें कोई अंतर नहीं। तो कहेंगे परिपक्व है, बुद्धि कभी विपरीत नहीं, रोज बुद्धि योग बाबा से लगा रहे हैं, रोज बुद्धि की झोली में सद्ज्ञान भर रहे हैं। माना बाबा से रोज दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। बाबा जो ज्ञान समझाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, सद्बुद्धि ही तो मिलती है, दिव्य विवेक ही तो मिलता है, विजडम ही तो मिलता है। तो मेरा यथार्थ योग मीन्स मेरी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होनी चाहिए, संशय बुद्धि न बने। बाबा ने कहा ना, संशय आने से पद ऊंचा नहीं पा सकते, क्योंकि संशय माना पुरुषार्थ होगा नहीं ना। फिर निश्चय से ही पुरुषार्थ चलता है। व्यक्ति आता है जाता है, सेवा करता है, सहयोग करता है, क्लास में भी बैठेगा, पर जब तक निश्चय नहीं जीवन बनेगा नहीं। आत्माओं के ऊपर नीचाई देखकर आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ को देखकर मेरी बाबा प्रति जो प्रीत बुद्धि है, समर्पण बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वारिस क्वालिटी यही एक बाबा ने निशानी बताई कि वारस क्वालिटी माना सब कुछ जानते हुए भी उसी निश्चय लगन उमंग से चलते रहना। और जितना मैं योगी बनती जाऊंगी, बाबा कहते हैं अंदर से महसूस होगा कि मैं शुद्ध होती जा रही, अंदर में अब कोई विकार नहीं। और हरेक पुरुषार्थी बाबा के बच्चों को यह अनुभव होगा कि कैसे धीरे धीरे कर्म से विकार गए, वाणी से गए, मन में तूफान वो भी कम होते गए। हमें महसूस होगा कि मैं अंदर से शुद्ध आत्मा, मैंने ऊपर से नियम पालन किए हैं ऐसे नहीं, पर मैं हूं ही शुद्ध, अंदर से कोई विकार मुझे सताता नहीं। तो ये मौका है मधुबन में साइलेंस में बाबा की इस भूमि में जो तप की शक्ति है, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। बाबा क्या चाहते हैं, समय अनुसार और हम कहां तक इस मास की ही कोई एक मुरली में बाबा ने कहा अव्यक्त रिवाइज अव्यक्त वाणी में कि एक अनहद नाद अंदर से बाबा बाबा होता रहे पहले बाबा यज्ञ सेवा कई चीजें थी धीरे धीरे बाबा 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 बस एक निरंतर लगन लगी रहे अंदर जैसे हर योगी संत भक्त तपस्वियों का भक्ति में भी सुनते हैं हम उनकी कहानियों में लास्ट में यही बताते कि आखिर में वो समा गए अंतर ध्यान हो गए ज्योति निकलकर ज्योति में समा गई कहने का भावार्थ कि बस एक ही याद बाबा जो हमें कहते हैं ना अंत में और कोई याद न रहे हमें भी ये लगन लग जाए मुझे महसूस हो सबके बीच में भी मैं एक अलिप्त निर्लिप्त मैं अंदर से एक याद में समाई हुई आत्मा और वो आनंद इतना अच्छा होता है क्यों बाबा कहता है ना अतीन्द्रिय सुख किसके आगे फिर और कोई प्राप्ति महत्व नहीं रखती है ना जब तक वो याद का सुख आनंद महसूस नहीं होता तब तक हमें आत्माओं से पाने की इच्छाएं रहती और वो इच्छाएं ही अवस्था को नीचे लाती हमें बहिर्मुख बनाती योग तुड़ाती एक्चुअली है ना जो सुख मिलता इलाही है ना वो मौलाई मस्ती इलाही खुदाई अलौकिक वो यही समय है जब हम डायरेक्ट बाबा से ये अनुभव कर सकते हैं और ये एक ऐसा अवस्था और अंदर का अनुभव होता है जो हम दादियों में बाबा में मम्मा में देखते हैं कि माना वो सब कुछ करते भी वो अंदर में वो अनुभव में हम रह सकते हैं एक रस अवस्था अब ज्यादा हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्थिति के हिसाब से अप डाउन्स नहीं आने चाहिए कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें नुकसान भी होता, मुश्किल भी लगता, भी मेरे को नहीं सेट हो रहा है वो भी लगेगा, करते करते मास्टरी आ जाती। अब हमें योगी जीवन अनुकूल हो गया है, हम सेट हैं इसमें, ये महसूस। तो एक रस अवस्था बनी, अभी भी मन उखड़ना नहीं चाहिए। अंदर से मन उखड़ जाता है ना कई बार, वो नहीं। अब मैंने अपनाया है नहीं, ये है ही जीवन मेरा, ये वास्तविक जीवन है, ये ही जीने का सही तरीका है, ये महसूस। और कुछ भी हो, पापा कहते हैं ना, अब इतना संयम, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, श्रीमत के विपरीत और कोई विधि नहीं, श्रीमत ही विधि कर्म की। मेरे हर कर्म, हर समस्या का समाधान करने की मेथड श्रीमत के अनुकूल। इसके अलावा और कोई विधि मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं करना चाहती नहीं। तो समय अनुसार प्यारे बाबा हम सभी से अब कौन सा सहयोग मांग रहे हैं? अब भगवान भी अपना कार्य कंप्लीट करना चाहता है ना? हर चीज अपने समय पर ही पूरी होनी है। हमें लगेगा कि विनाश देरी से हो रहा है, पीरियड लंबा हो रहा है, नहीं, ड्रामा में वो ही है, ये टाइम हमारे लिए नहीं है, आने वाली नई आत्माओं के लिए, उनके लिए, उनके कारण हमें मिल रहा है। और उस हिसाब से हमारा रोल अब भगवान से लेने का नहीं होना चाहिए, हमें उनका साथी बनना है, मददगार। हम जब से बाबा के बने हैं, हम सब ने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, गुण से, कला से, टाइम से, हर प्रकार से बाबा के कार्य में साथी बने हैं। अब अंत के साथी कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे ना, कि और कोई आएगा? हम ही बनेंगे ना? और अब कार्य को जब बाबा कंप्लीट करना चाहते हैं, अब सहयोग भगवान हमसे कौन सा मांग रहे? हमारी अवस्था का, हमारी स्थिति का। जो बाबा ने कहा ना, तुम्हारे चेहरे और
चरण से सेवा,
चेहरा चलन मनसा ऑटोमेटिक सेवा करेंगे, अवस्था लगन तपस्या। अब वो सहयोग हम देने तैयार है, क्योंकि उसमें हमें सबसे डिटैच होना पड़ेगा। वो इजी था क्योंकि उसमें तो सबसे अटैच होना होता है ना, सेवा में तो हम अटैच होते हैं ना सबसे, इसलिए सेवा में जाना सहज लगता है। तपस्या में जाना है तो सबसे डिटैच होना पड़ेगा। आपको बाबा के कमरे में जाना है, बैठना है योग में, तो आपके जो दो चार साथी हैं उनसे अलग तो होना ही पड़ेगा, तो आप जा सकते। वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो घूमने जा रही हूँ, और आपके नहीं नहीं इधर योग करना है, वो कहते नहीं घूमने, तो आपको डिटैच तो होना ही पड़ेगा बहुत छोटी छोटी बात में। अब कौन सा सहयोग चाहिए वो सोचना है, जो कर रहे हैं दे रहे हैं, हमारा जमा है सफल है, वो भी हमें बल दे रहा है, पर समय अनुसार नया नया सीखना बदलना भी होता है, अब समय अनुसार क्या करना है, ये सहयोग हम बच्चों से बाबा चाहते। ये बहुत अच्छा मौका मिला है, तो हम अभ्यास करेंगे 5 मिनट, खड़े हो जाएंगे। जिनको तकलीफ हो तो भले बैठे रहे, सभी बातों से न्यारे हो जाए। मस्तक के बीच ब्रकुटी में केंद्रित हो जाए, अब हाथ से पांव से शरीर से निकल स्वयं के निराकार आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। पहला अभ्यास स्वयं में मस्त हो जाना, मैं शुद्ध सत्य शांत चैतन्य आत्मा, राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास बाबा में मगन। मैं और बाबा लेकिन अब तो बाबा ही बाबा। राइट साइड घूम जाए, तीसरा अभ्यास सदा वतन में रहना, ऊपर ही भ्रमण करना। निज धाम में असली घर में लाइट माइट की दुनिया में राइट साइड घूम जाए, प्रैक्टिकल में बाकी सभी बातों से साक्षी। डिटैच ऑब्जर्वर, न्यारा प्यारा उपराम, देह की धरणी से दुनिया देहधारियों से ड्रामा के हर सीन से साक्षी। राइट साइड घूम जाइए, अब मैं मास्टर दाता आत्माओं को प्रकृति को लौकिक अलौकिक परिवार को
देना है, दाता बनना है। शांति दे, शुभ भावना दे, ज्ञान दे, हिम्मत दे, प्यार दे, आशा जगाए, उमंग भरी, खुशी दे, दुआएं दे, दाता, होनहार देवता, बैठ जाए।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।